बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے بچوں اور کڈز متنی چینل کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی
شام
امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہستا مسکراتا رکھے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے تو پیارے بچوں آپ جانتے ہوں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں جو ہمارا سب سے پہلے سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک پھر کلام اور پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی کبھی ورلڈ میپ اور میگنیٹک وال تو کبھی بزرگوں کی عقیدے کبھی ماہنامہ فیضان مدینہ تو کبھی قرآن سورت ہے تو آپ نے آج ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے 10 گناہ مٹاتا ہے 10 درجات بلند فرماتا ہے پیارے بچوں اور کڈز متنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں انشاء اللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پیارے بچوں ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے جی ہاں تلاوت قرآن پاک کے آداب میں آتا ہے کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا کر تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے انشاءاللہ خوب برکت ملے گی تو پیارے بچوں اور کڈز متنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک
بچوں کی شام بچوں کی شام
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم
سبحان الله ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک سنائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے تو پیارے بچوں اور کڈز متنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام
بچوں کی شام بچوں کی شام
جو ہو چکا
جو ہوگا وہ زور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا وہ زور جانتے ہیں
ہے
حسین بھائی بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بیٹھ کر یہی کلام پڑھیں، اللہ آپ کو سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کیڈس مت نہیں چل گئے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک کہانی۔
بچوں کی شام، بچوں کی شام، کی شام۔
پیارے بچوں اور کڈس متنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں۔ کہانی بڑی ہی مزیدار ہے، اور ہاں ہمیں اس کہانی سے ایک سبق یعنی لیسن بھی ملے گا جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں، زیبرا اور اونٹ دونوں اچھے دوست ہیں، کبھی کبھی دونوں ساتھ گھومنے بھی چلے جاتے تھے۔ ایک دن اونٹ زیبرا کے گھر آیا اور باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، कि हमें जंगल के किनारे पर जो पार्क है वहां चलना चाहिए। ज़ेब्रा कहने लगा, नहीं नहीं, पिछली बार जाकर ही गलती की, मैं तो वहां नहीं जाता। ऊंट ने कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए, जबकि तुम तो जानते हो वहां ताजा फल मेवे और हरी हरी घास भी होती है। मुझे तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। ज़ेब्रा ने जवाब दिया, मसला पार्क का नहीं, इसका रास्ता है। यानी कि ज़ेब्रा को मसला पार्क से नहीं था, उस रास्ते से था। अभी बताएंगे कि इस रास्ते से क्यों था। पिछली बार भी धूल मिट्टी की वजह से मेरी स्किन खराब हो गई थी। किसकी वजह से? धूल मिट्टी की वजह से। ऊंट ने कहा, साथ चलते तो अच्छा था, लेकिन जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर मैं खुद ही चला जाता हूँ। फिर ऊंट पार्क पहुंच गया। फिर पार्क की ठंडी ठंडी हवाओं, परिंदों की आवाजों और घने दरख्तों की छाव में ऊंट खूब मजे कर रहा था। कि एक हिरन ने पूछा, ऊंट भाई, जंगल में तो बहुत कुछ है, लंबे दरख्त, ताजे ताजे फल, घूमने के लिए बहुत सी जगह, मतलब कि यहाँ वाले बहुत आराम में है, जबकि जंगल के बाहर रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत है। इतनी सुकून और आराम वाली जिंदगी नहीं है, तो तुम हमेशा के लिए यहाँ ही क्यों नहीं आ जाते? ऊंट ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन ये मत भूलो कि अल्लाह पाक ने हर एक को अलग क्वालिटीज दी हैं। इसी तरह हम सब जानवरों की भी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं। हमें अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि हम रेगिस्तान यानी डेजर्ट में रह सके। परिंदे को उड़ना सिखाया। अब तुम ही बताओ, कोई मछली तुमसे कहे कि तुम पानी के अंदर आ जाओ, तो क्या तुम पानी में चले जाओगे? नहीं ना। हिरन हंसते हुए कहने लगा, नहीं नहीं भाई, मैं आपकी बात समझ गया। अल्लाह पाक ने मुझे जमीन पर रहने वाला बनाया है, इसी में खुश रहूंगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मटनी चैनल के नाजरीन, जानवरों की तरह हर इंसान की अपनी क्वालिटीज होती हैं। इसके पास भी कुछ ऐसा होता है जो दूसरों के पास नहीं होता। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें इस पर राजी और खुश रहना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें शुक्र अदा करने वाला बनाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप लोग रेडी हैं? किस चीज के लिए रेडी हैं?
सवाल के लिए, सवाल जवाब।
मैं आपसे सवाल करूंगा और आप इसके
जवाब दें।
इस कहानी में कौन कौन से जानवरों का नाम आया है? जी, आपने सबसे पहले हाथ उठाया। आप
ऊंट,
अच्छा, फिर
ज़ेब्रा और हिरन।
हिरन और एक और भी आया। जी, तीन जानवरों का तो सही बताया, एक का मैं बता देता हूँ, वो है फिश यानी
मछली।
प्यारे बच्चों, इस कहानी से सबक क्या मिला ये कौन बताएगा?
कि हमें अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए
और इस पर राजी रहना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स, मतनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम,
आज के सेगमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ ज़ेर रज़ा। आज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है फायर एंड बर्न सेफ्टी। बच्चों, फायर एंड बर्न सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी वजह से हमारे घर, स्कूल, मदरसा या ऐसी किसी प्लेस जहाँ हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड होता हो और वहाँ आग लग जाए और हमें अपने आप को सेफ रखते हुए वहाँ से एग्जिट भी करना है, इसके लिए एक अहम चीज ये होती है कि हमें अपने घर, स्कूल, मदरसे या फिर पब्लिक प्लेस पर मौजूद फायर अलार्म, फायर सेफ्टी टूल्स एंड फायर एंड बर्न सेफ्टी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि हम कभी अगर ऐसी डेंजरस सिचुएशन में हो तो हमें अपने आप को उस सिचुएशन में सेफ रखने का प्रोसेस मालूम हो, ताकि हम सब फायर एंड बर्न से महफूज रह सकें। अब वो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हमें लाजमी याद रखनी चाहिए? आइए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट की वजह से फायर यानी आग लग सकती है। लिहाजा आपने ऐसे एलिमेंट्स को यूज नहीं करना। अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा हो तो उसे भी मना करना है। ये एलिमेंट्स लाइटर, माचिस, पेट्रोल या कोई भी डिफरेंट फायर टूल हो सकते हैं, जिन्हें हम बच्चों ने यूज नहीं करना है। हमें जलते हुए चूल्हे, कैंडल्स, हीटर, बारबेक्यू ग्रिल या इस तरह की दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। हाथ मुंह धोने या नहाने से पहले गर्म पानी का टेम्परेचर अच्छी तरह चेक कर लें। आपको अपने किसी दोस्त, अपने घर के बड़े या फैमिली मेंबर का फोन नंबर याद होना चाहिए या अपने घर, स्कूल, मदरसे का एड्रेस भी याद होना चाहिए ताकि ऐसे सिचुएशन में आप इन्हें फोन कर सकें। या फिर आपको फायर डिपार्टमेंट का फोन नंबर याद हो जहां आप फोन करके इनकी हेल्प ले सकते हैं। घर, स्कूलों, मदरसों में फायर अलार्म लगे होते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि फायर अलार्म बजने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए और इसके बजने का क्या मतलब है। फायर अलार्म बजने का मतलब ये है कि इस जगह कहीं आग लगी है और हमें फौरन वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल, मदरसे में स्मोक देखें या फील करें तो फौरन अपने बड़े या टीचर को इन्फॉर्म करें ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रहें। आग लगने के बाद अगर आप इस प्लेस पर या इसके करीब कहीं मौजूद हैं, तो फायर एंड बर्न सेफ्टी के रूल फॉलो करते हुए फौरन इस प्लेस से एग्जिट करें और इस जगह से जितना दूर हो सके हो जाएं। याद रखें, आप जहां भी हो वहां स्मोक भर जाने या आग लगने की सूरत में डर के छुप नहीं जाना बल्कि वहां से बाहर निकलना है और फिर वहां जाके अपने बड़ों से कॉन्टेक्ट करना है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना के फायर एंड बर्न सेफ्टी में अपने आप समेत दूसरों को सेफ करना कितना जरूरी है। लिहाजा आपने भी आज से इन सब रूल्स को फॉलो करना और दूसरे बच्चों को भी फॉलो करवाना है। तो ये थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से हमारी इन्फॉर्मेशन। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
तो प्यारे बच्चों, आए हम नारे लगाते हैं, मोहम्मद मुस्तफा
सबसे
सबसे आखिरी नबी,
ताज तारे अंबिया
सबसे आखिरी नबी,
है हबीब किबरिया
सबसे आखिरी नबी,
है शफी उल वरा
सबसे आखिरी नबी,
आसियों का आसरा
सबसे आखिरी नबी,
एतिकाद फातिमा
सबसे आखिरी नबी,
है यकीन आयशा
सबसे आखिरी नबी,
अकीदा सब सहाबा का
सबसे आखिरी नबी,
अकीदा अहल बैत का अकीदा गांव से बात का
सबसे आखिरी नबी,
बच्चा बच्चा बाल उठा
सबसे आखिरी नबी,
है अकीदा ए रसा
सबसे आखिरी नबी,
नारा है अत्तार का
सबसे
आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों, क्रिकेट से मत नीचे लगे नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मैनर्स।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूँ फुजैला तारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक अहम बात ये भी है, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है, इससे दूसरों का दिल दुखता है और किसी का दिल दुखाना बहुत गुनाह की बात है। आमतौर पर हम दूसरों की नकल उतार कर मजाक उड़ाते हैं, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के जूतों के कलर और बस्ते वगैरह के डिजाइन का मजाक उड़ाते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत गुनाह की बात है। एक लम्हे के लिए आप सोचे कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। आए मजाक उड़ाने वालों का अंजाम सुनते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ आओ, तो बहुत बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और उसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा, यहाँ तक के दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा, इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। अल्लाह पाक हमें किसी का मजाक और दिल दुखाने से बात रखे और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बुजुर्गों के अकीदे।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
आज हम सेगमेंट में बुजुर्गों के अकीदे में एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुबारक अकीदा सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही मशहूर बुजुर्ग, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं, जन्नती सहाबी हजरत इरबाज बिन सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वाए तबूक में एक रात आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ऐ बिलाल, क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है? इन्होंने अर्ज की, हुजूर आपके रब की कसम, तोशादान, खाने के बैग खाली हो चुके हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी तरह देखो, अपने तोशादान को झाड़ो। सबने अपने अपने तोशादान झाड़े तो टोटल 7 खजूर मिली। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको एक दस्तरखान पर रखा और अपना मुबारक हाथ इन पर रखा, फिर फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। हजरत इरबाज बिन सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बरकत वाले हाथ के नीचे से एक एक खजूर उठाकर खाने लगे। हजरत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड में गुठलियां जमा कर रहा था, पेट भर कर खाने के बाद जब मैंने इन्हें गिना तो वो 54 यानी 54 थी।
सुभान अल्लाह।
और मेरी तरह हमारे दूसरे साथियों ने भी पेट भरकर खजूरें खाई। जब हम सब ने पेट भरकर खा लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना बरकत वाला हाथ उठा लिया तो हमने देखा वो 7 खजूरें वहीं मौजूद थी।
सुभान अल्लाह।
नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, इन खजूरों को संभाल कर रखो, इनमें से कोई ना खाए, फिर काम आएंगी। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि हमने इनको नहीं खाया। फिर जब दूसरा दिन आया और खाने का वक्त हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 7 खजूरों को लाने का हुक्म दिया। फिर इसी तरह अपना मुबारक हाथ रखा, फिर फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। हजरत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त हम 10 आदमी थे, सब ने पेट भरकर खा लिया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ वहां से उठाया तो पहले की तरह 7 खजूरें मौजूद थीं।
सुभान अल्लाह।
आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, अगर मुझे अल्लाह पाक से हया ना आती तो मदीने वापस होने तक हम इन्हीं 7 खजूरों से खाते। फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें एक लड़की को अता फरमाई, वो इन्हें खाता हुआ चला गया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़े को अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में लिखने से हमें मालूम हुआ कि हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये अकीदा था कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसी पावर्स दी हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो चाहें कर सकते हैं। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खजूरों को लोगों के लिए काफी बना दिया और सबने पेट भरकर खजूरें खाई। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें बुज़ुर्गाने दीन अलैहि रहमा के अकीदों पर साबित कदमी नसीब फरमाए। आमीन।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार मेटे मदीने की हाजरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मत चलिए नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सिविक सेंस।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
प्यारे बच्चों, सिविक सेंस के साथ मैं हूँ गुलाम मुर्तजा। प्यारे बच्चों, क्या होती है पब्लिक फैसिलिटीज और किस तरह हम पब्लिक फैसिलिटीज अवामी सहूलियात की चीजों का ख्याल रख सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये वो चीजें होती हैं जो कोई मुल्क अपने शहरियों के सहूलत के लिए इन्हें प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर सड़क, बस स्टॉप, पार्क, बैठने की सीट, बेंचेस, पब्लिक डस्टबिन, बिजली, सफाई, पब्लिक वाटर कूलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पौधे, दरख्त, सिक्योरिटी, तालीम। आप ये समझे कि अवाम की भलाई के लिए हुकूमत जो सहूलत देती है वो पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती हैं। जी बच्चों, ये तो हमने जाना कि अवामी सहूलतें क्या होती हैं। अब हम बताएंगे वो चीजें जिनसे हम इन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए मिसालों से समझते हैं। अक्सर बस स्टॉप पे बैठने की जगह टूटी हुई होती है या कोई गंदगी पड़ी होती है। ये करना गलत है, बहुत बुरी बात है। हमें इन्हें साफ रखना चाहिए ताकि किसी के कपड़े खराब ना हो। अक्सर स्ट्रीट लाइट गली मोहल्ले के बच्चों की शरारत या क्रिकेट खेलते हुए बॉल स्ट्रीट लाइट से लगता है, जिसकी वजह से वो लाइट बंद हो जाती है, जिससे आम लोगों को रात के वक्त वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी मैदान और पार्क में खेलना चाहिए ताकि किसी नुकसान से बच सकें। प्यारे बच्चों, रोड पर मौजूद डस्टबिन जो कि अक्सर फुटपाथ से जुड़े होते हैं, जो कि हमारे लिए ही लगे होते हैं ताकि हम उसमें कचरा डाल सकें, मगर नादानों की शरारतों से डस्टबिन का हाल नाकाबिले बयान हो जाता है। हम तो मुसलमान हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफाई निस्फ ईमान फरमाया है, तो प्लीज ऐसा मत किया करें, क्योंकि इससे मेरा शहर और मुल्क गंदा होता है। हम समंदर पर जाते हैं, इसे साफ नहीं रहने देते और गंदा कर देते हैं। ये भी फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल ही है। बुजुर्गों और बड़ी उम्र के लोगों के लिए हुकूमत आम रास्तों पर बेंचेस लगाती हैं ताकि वो थोड़ा आराम करें और फिर अपना सफर शुरू कर दें। मगर कुछ लोग शरारत में उसको भी नहीं छोड़ते, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। इसी तरह पब्लिक बसेस की सीटों को खराब करना, किसी सहूलत का गलत इस्तेमाल करना, पौधे उखाड़ देना, फूलों को तोड़ लेना, पब्लिक पार्क में झूलों को खराब करना, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल है। हमें तो इन चीजों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। बल्कि कोई भी इसको खराब कर रहा हो तो हमें प्यार से इन्हें समझाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सेगमेंट सिविक सेंस में सीखा कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज का किस अंदाज में ख्याल रखना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे शहरी बन सकें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
तो प्यारे बच्चों और किड्स, मतनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।
पहला सवाल, बताएं नूह अलैहिस्सलाम कौन है? बताएं नूह अलैहिस्सलाम कौन है? जी
नबी है।
नबी है जी,
नबी है,
अल्लाह पाक के नबी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के
नबी हैं।
जवाब
दुरुस्त
है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा फरमाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा फरमाया? कौन बताएगा? जी इन्हें माइक दें।
क्वेश्चन क्या था?
हजरत आदम अलैहि सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा फरमाया?
मिट्टी से।
मिट्टी से जवाब
दुरुस्त
है। मकाम इब्राहिम में किन नबी अलैहि सलाम के कदमों के निशानात हैं? ये बताएगा? जी गुलाम मुस्तफा भाई।
हजरत इस्माइल अलैहि सलाम।
हजरत इस्माइल अलैहि सलाम, और कोई? जी
हजरत इस्माइल अलैहि सलाम।
हजरत इस्माइल अलैहि सलाम। जी अनस भाई को दे जल्दी से माइक।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी हमजा भाई के बराबर वाले को माइक दें।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
यहाँ से भी बताएगा?
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब
दुरुस्त
है। जिन्होंने जवाब गलत दिया उनकी इस्लाह हो गई यकीनन। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। किस दिन को दिनों का सरदार कहा जाता है, यानी किंग कहा जाता है? सबको पता है, चले सारे मिलके बता दें। जुमा के दिन को दिनों का सरदार यानी किंग कहा जाता है। जवाब
दुरुस्त
है। ये बताएं कि दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? दरिया का पानी, दरिया का है मैंने, दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? जी
नमकीन।
दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? जी बराबर वालों को दे।
नमकीन।
दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? जी
मीठा।
क्या दरिया का पानी मीठा होता है? और मीठा जवाब
दुरुस्त
है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम बताएं।
हजरत अब्दुल्लाह
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी आप बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम बताएं।
हजरत अब्दुल्लाह।
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب
درست ہے۔
تو پیارے بچوں، کڈز متی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کنیز فاطمہ۔
بچوں کی شام، بچوں کی شام،
کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے،
واہ بھائی،
اچھی باتیں سکھاتی ہے،
واہ،
چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے،
ہیں،
کتنی اچھی بچی ہے،
بہت اچھی ہے،
میں یہ سچی ہے،
کوئی
کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے،
سچی ہے،
سب کے کام یہ آتی ہے،
واہ بھائی،
اچھی باتیں سکھاتی ہے،
واہ،
چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے،
ہیں،
کتنی اچھی بچی ہے،
بہت اچھی ہے،
میں یہ سچی ہے،
کوئی غلط کرتا ہے کچھ،
کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے،
سچی ہے،
سب کے کام یہ آتی ہے،
واہ بھائی،
اچھی باتیں سکھاتی ہے،
واہ،
چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے،
ہیں،
کتنی اچھی بچی ہے،
بہت اچھی ہے،
میں یہ سچی ہے،
کوئی غلط کرتا ہے کچھ، تو یہ اسے سمجھاتی ہے،
کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے،
سچی ہے،
کیا کر رہی تھی آپ؟ کچھ بھی تو نہیں، آپ ہی کچھ نہیں کر رہی تھی، یہ آپ نے پیچھے ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، آپ ہی بس ایسا ہی، کھتیجا جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیا چھپایا ہوا ہے آپ نے؟ دکھائے اپنا ہاتھ،
تو یہ اسے سمجھاتی
ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وک ہے، جن لڑکیوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں وہ اسے پہنتی ہیں، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے بال چھوٹے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ میں فروا سے چیک کرنے کے لیے لائی ہوں، اسے پہن کر چٹیا باندھ کے دیکھوں گی کہ مجھ پر کیسی لگتی ہے۔ ختیجہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی چھوٹی ہیں، اس طرح کی چیزیں چھوٹی بچیوں کے لیے نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں کو بھی اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اسلام میں کسی انسان کے بالوں کو اس طرح لگانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، حدیث شریف میں ایسی لیڈیز پر لعنت کی گئی ہے جو کسی انسان کے بالوں کی چٹیاں بنا کر اپنے بالوں میں جوڑ لے، لیکن آپ ہی یہ تو نقلی بالوں سے بنی ہوئی ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ اصلی بال نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کو اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے، کیوں آپ ہی؟ آپ کو پتا ہے نا مجھے لمبے بال رکھنے کا کتنا شوق ہے، ختیجہ ابھی آپ چھوٹی ہیں اور چھوٹی بچیوں پر یہ چیزیں بہت اوور لگتی ہے، اسی لیے نہ ہی انہیں اس طرح کی چیزیں یوز کرنی چاہیے اور نہ ہی میک اپ کرنا چاہیے، جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو تب ان چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیے گا جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو آپ کو ان چیزوں کے لیے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اور پھر تو آپ کے کان بھی چھیدوائے جائیں گے تاکہ ان میں آپ بوندے وغیرہ پہن سکیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر میں اپنی پسند کی جیولری خرید کر پہنوں گی، ضرور پہنیے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ لیڈیز کی جیولری پسند کیجیے گا، کیونکہ آج کل تو جینٹس کی جیولری بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، وہ بھی کان چھدوا کر بالیاں پہنتے ہیں، آج کل ملنے لگی ہے بازار میں، لیکن یہ بہت بری بات ہے، جینٹس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جینٹس کا ناک یا کان چھدوانا اور ان میں بالیاں اور دوسری جیولری پہننا بالکل بھی جائز نہیں۔ اچھا جی، یہ چیزیں صرف لیڈیز پر ہی سوٹ کرتی ہے اور انہی کے لیے ہے، جینٹس کو لیڈیز والے کام نہیں کرنے چاہیے، اللہ پاک ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ابھی آپ میرے ساتھ آئیں، مما نے ہمارے لیے جوس بنایا ہے اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں،
کتنی اچھی بچی ہے،
بہت اچھی ہے،
میں یہ سچی ہے،
کوئی غلط کرتا ہے کچھ، تو یہ اسے سمجھاتی ہے،
بچوں کی شام، بچوں کی شام،
سمدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔
بچوں کی شام، بچوں کی شام،
بچوں کی شام، جی یہاں سے ایک بچے کو کھڑا کریں گے ہم اور وہ میگنیٹ تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بچے کو کھڑا کرتے ہیں، جی حمزہ بھائی کھڑے ہو، میگنیٹ اٹھائیں اور تھرو کر دیں میپ پر، جی آسٹریلیا کے بارے میں ہمارے محمد رضاوی بتائیں گے ہمیں، جی محمد رضاوی۔ پیارے بچوں کڈس مدین چینل کے ناظرین، آج آپ کو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور وہ ہیں ذوالکفل علیہ السلام۔ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کے بعد آپ کو نبی بنایا۔ آپ پوری عمر ملک شام میں رہے اور وہیں اللہ پاک کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ یتیموں، غریبوں، ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ انہی ضرورت مند لوگوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل، کفالت یعنی پرورش کرنے والا، مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میری وفات کے بعد نیکی کے عمل پر قائم رہنا، لوگوں کو بھی ایمان اور نیک عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ آپ 75 ایئرز کی عمر میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار دمشق کے علاقے الصالیہ میں ہے۔
جی ہاں، تو آج ہم نے پیارے بچوں کون سے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا؟ ذوالکفل علیہ السلام۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام، آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام۔